कुंजा बिहारी तबा बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी हरि कृष्णा 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरि हरे हरे राम 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 हरि हरे कृष्णा कृष्णा हरि हरे हरे राम 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 हरि हरे हरे कृष्णा 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 हरि हरे हरे राम 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 हरि हरे हरे कृष्णा 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 हरि हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरि हरे हरे राम 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 हरि हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे इताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है भागवतम श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 28 और 29। तो 29 नंबर उधर लिखा है, 28 नंबर श्लोक बहुत बड़ा है इसलिए उधर लिखा नहीं, सीधा तात्पर्य पढ़ता हूँ, चलेगा ना? तात्पर्य डायरेक्ट ये अपना अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितेशी परमेश्वर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि एक गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता अपने पुत्र की किस प्रकार शिक्षा दे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित तथा शिष्ट थे, इन उपदेशों से सकार कर्मों से न बनने वाले तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठाते हैं। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिनमें से सबसे बड़े भरत थे और जो महान भक्त तथा वैष्णवों के अनुयायी थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वह संपूर्ण संसार पर शासन करे। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव पागल के सदृश नग्न तथा बाल बिखरे रहने लगे। तब यज्ञाग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने हेतु उन्होंने ब्रह्मामृत को छोड़ दिया। तात्पर्य, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए वे वास्तव में उनके लिए न थे, क्योंकि वे पूर्व से ही शिक्षित तथा उच्च ज्ञानी थे। वास्तव में ये उपदेश उन सन्यासियों के लिए है जो उन्नत भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करें। भगवान ऋषभदेव ने अपने परिवार में रहते हुए भी ग्रस्त जीवन का परित्याग कर दिया था और नग्न पागल की भांति रहते थे। अभी श्लोक क्रमांक 29, अभी हम उसको ये करेंगे, आप भी पीछे कर बोल सकते हैं। जड़ अंध मुख बधिर पिशाच उन्मादक वत अवधूत वेश अभिभाष्यमानम अपि जनानाम ग्रहितं मौनं व्रतत्रश्निं बभुव। जड़ अंध मुख बधिर पिशाच उन्मादक व्रत अवधूत वेश अभिभाष्यमानं अपि जनानाम ग्रहितं मौनं व्रतं त्रश्निं बभुव। जड़मुख अंध बधिर उन्मादक व्रत अवधूत वेश अभिभाष्यमानं अपि जनानां ग्रहितं मौनं व्रतं त्रश्निं बभुव। जडांध मुख बधिर अभिभाष्यमानमपि जनानां जडाद्य मुख बधिर अभिभाष्यमानमपि जनानां अनुवाद। अवधूत रूप अर्थात किसी भौतिक कर्तव्य की चिंता से रहित महान साधु का रूप धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे बहरे तथा गूंगे जड़ भूत अथवा पागल के समान मानव समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते किंतु वे मूक बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते। तात्पर्य, अवधूत शब्द से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की चिंता नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने में लीन रहकर श्री भगवान का चिंतन करता हुआ श्री भगवान से परम प्रसन्न रहता है। दूसरे शब्दों में जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर दिया हो अवधूत कहलाता है। ऐसे व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका है और नितांत विलग तथा स्वतंत्र रहने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पाद सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांच नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे पौर्वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधीश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रि। वांछाकल्पतरुभ्यश कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी भक्तों का रविवार की भागवतम सत्र में स्वागत है। विशेषकर जो ब्रह्मचारी और सीनियर भक्त है तो उनका कृपा चाहता हूँ, आशीर्वाद, ताकि मैं ये जो विषय है भागवतम का उसके बारे में बोल सकूँ। तो ये जो अभी जो चल रहा है वो वृषभदेव के उपदेश है अपने पुत्र के लिए। तो वृषभदेव के सौ पुत्र है, सौ में से सबसे जो बड़े हैं वो भरत है। और अभी ऐसा समय है कि वृषभदेव पूरा अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप के अभी मतलब इससे गृहस्थ आश्रम से ये कर रहे हैं, मतलब ये जो कर्तव्य है उससे अभी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी सभी बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। तो इसे हमें क्या सीखना चाहिए कि जो गृहस्थ व्यक्ति है अपने पुत्रों को कैसे उपदेश देना चाहिए, तो उनको ये जो चैप्टर है उपदेश का वो पढ़ना चाहिए। बाकी कुछ बोलने का जरूरत नहीं, इस उपदेश जो चैप्टर है वृषभदेव का इसमें सब कुछ है। एक जो भी उपदेश है अपना पुत्र के लिए जो पिता देना चाहता है ना वो सभी इसमें है। इसमें भरत जो है सबसे बड़ा, उसको पूरा राज्य का कारोबार सौंप के सभी बाकी 99 पुत्रों को बोल रहे कि उसको फॉलो करो, है ना। जो ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो भरत था ना वो आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च था। उसे इनसे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि जो भी हमारा देश रहने दो, गांव रहने दो, हमारा जीवी रहने दो, उसमें जो आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त जो उन्नत है उनके मार्गदर्शन से उनके आज्ञा के पालन से हमें सब करना चाहिए। गृहस्थ परिवार में अगर आप हो तो अपने घर में आध्यात्मिक दृष्टि से जो उच्च व्यक्ति है ना उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। उसके उच्चार विमर्श जो भी सलाह मतलब मसलत है उनसे लेना चाहिए, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई हमारा भारत देश है और भारत देश का पंत प्रधान अगर भक्त है, समझो इस्कान का भक्त है कोई अच्छा, तो भारत देश का काया पलट हो जाएगा, है ना। अभी जैसा हमारा जीवी है, जीवी में हम किसके मार्गदर्शन में काम करते हैं, गुरु महाराज के मार्गदर्शन, तभी तो हमारा जीवी में सब इतना लोग आते हैं, है ना। तो अगर गुरु महाराज किधर बाहर है समझो, तो उसके बाद जो भी आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त हमारा है उनका मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए, है ना। तो यही परंपरा है। तो ये भरत महाराज भरत को ये क्यों बोल रहे, सब पुत्रों को बोल रहे कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा चढ़ा है, भक्तों का मार्गदर्शन सबसे सब करता है ना, इसलिए तुम उनको फॉलो करो, है ना, तभी शांति प्राप्त होगी आपको, सुख प्राप्त होगा, गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, सब कुछ आपका जो आगे का गति है वो अच्छा होगा। अभी इस उपदेश में जो इस हफ्ते में जो उपदेश दिया है ना भरत महाराज ने, अभी अभी तो एंड हो रहा है, लेकिन इसमें अपना 84 लक्ष योनि है ना, उसमें जो योनि ऐसा क्रमिक आगे बढ़ती है उच्च उच्च होती है उसका जो दिया है इधर, तो पहले तो निर्जीव वस्तु है ना, माती मट्टी पत्थर, उसे श्रेष्ठ है वृक्ष घास वनस्पति। और वृक्ष घास वनस्पति ये भी 84 लक्ष योनि में आता है ना, और उसके बाद उससे ऊपर है कीटक सड़ी सर्प वगैरह रहता है ना प्राणी, फिर उसके ऊपर है बुद्धि विकसित हुए जो प्राणी होते हैं ना जैसे गाय बैल वगैरह वो, फिर उसके ऊपर है मानव मनुष्य, फिर उसके ऊपर है भूत, भूत मनुष्य के ऊपर है क्योंकि उनका शरीर नहीं होता, भागवत में दिया है ऐसा मैं मन से नहीं बोल रहा, तो उसके ऊपर है गंधर्व, गंधर्व के ऊपर है सिद्ध, गंधर्व तो आपको पता है ना वो नृत्य करते हैं देवलोक में, सिद्ध मतलब जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है ऋषि मुनि वो है, फिर उसके ऊपर किन्नर है, फिर उसके ऊपर असुर है, फिर उसके ऊपर देवता है, देवताओं में देवों का राजा फिर इंद्र श्रेष्ठ है, फिर इंद्र के ऊपर जो ब्रह्मा जी की पुत्र है ना दक्ष प्रजापति आदि वो श्रेष्ठ है, फिर उनमें भी ब्रह्मा जी के पुत्रों में शिवजी श्रेष्ठ है, शंकर जी श्रेष्ठ है, फिर शंकर शिवजी ब्रह्मा जी के पुत्र है ना इसलिए बाद में ब्रह्मा जी को बोला है श्रेष्ठ, अभी उसमें थोड़ा कॉम्प्लीट है शिवजी श्रेष्ठ का ब्रह्मा श्रेष्ठ है, लेकिन अभी शिवजी ने पिता स्वीकार किया है ना ब्रह्मा को तो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ है उसके ऊपर, और फिर ब्रह्मा के ऊपर भगवान कृष्ण, और उसके भी बाद जो है ना कृष्ण को जो प्रिय व्यक्ति है वो ब्राह्मण है सबसे ऊंचा। भागवत में बताया है कि भगवान से भी श्रेष्ठ बोला है भगवान भागवन ब्राह्मण को, वो इस दृष्टि से ताकि हम भौतिक जगत में ब्राह्मण के मार्गदर्शन में हम कार्य करें सब, इसलिए ब्राह्मण को हमारा शरीर है जो है ना उसमें भी जो सर है वो ब्राह्मण है ना, भुजा क्षेत्रीय है, हमारा पेट वैश्य है और पैर शूद्र है, तो शरीर में भी सर हमारा श्रेष्ठ है ना वो ऊपर है, तो समाज में ब्राह्मण कौन है सबसे ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में उच्च श्रेणी के सात्विक गुण होते हैं, ब्राह्मण में क्या होता है उच्च श्रेणी के सात्विक गुण होते हैं, और शास्त्र में ऐसा बताया है कि अगर हमारे अंदर सात्विकता है सिर्फ तो हमारा गति क्या होता है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मदे तिष्ठति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा, तो सिर्फ हमारे अंदर अगर सात्विक गुण है तो भी हमारा गति क्या होगा अच्छा होगा, अगर हमारा देहांत हो रहा है और उस वक्त हम सात्विक गुण में है तो हमारा इच्छा ना होती भी हम किधर जाएंगे ऊपर जाएंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, नहीं तो गोलोक धाम जाएंगे, तो सिर्फ क्या बोला है हमारे अंदर सात्विकता होनी चाहिए। तो ये अभी रजोगुण के बारे में अगर बोलेंगे हम थोड़ा सा, तो रजोगुण रजो रागात्मक का विधि, तो रजोगुण में क्या होता है राग होता है, मतलब हमारे जो इंद्रिय है ना पांच ज्ञानेन्द्रिय, तो हर एक इंद्रिय के विषय होते हैं और हर इंद्रिय उस विषय को भोगना चाहते हैं। अभी समझो हम कान एक हमारा इंद्रिय है तो उसका विषय क्या है श्रवण करना, तो मधुर संगीत सुनना हम चाहते हैं कान हमारा कान, तो उस मधुर संगीत सुनने के प्रति जो प्रियता होती है उसको क्या बोलते हैं राग बोलते हैं राग, तो हर इंद्रिय अपना विषय भोग चाहता है तो उस विषय के प्रति उसका राग रहता है, तो रजोगुणी व्यक्ति के अंदर भोगने की बहुत इच्छा होती है, अनंत इच्छा रहती है उसके अंदर रजो रागात्मक का विधि, तो उसमें दो होता है, एक जो हमारे पास वस्तु है उसके प्रति हमारी आसक्ति रहती है हम उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते, और दूसरा है राग और संग, संग का मतलब है कि कुछ वस्तु हमारे पास नहीं है लेकिन उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है तो उसको वो आसक्ति होती है, और जो हमारे पास है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो समझने के लिए महाभारत का हम दृष्टांत लेंगे दुर्योधन का, तो जब दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा था और पांडव इंद्रप्रस्थ के राजे थे, वो टाइम पे ऐसा नहीं कि दुर्योधन के पास कुछ कमी थी है ना, दुर्योधन हस्तिनापुर का राज्य बोले तो बहुत बड़ा राज्य उसका वो राजा था और उसके पास बहुत संपत्ति थी सब कुछ था, फिर भी इंद्रप्रस्थ वो प्राप्त करना चाहता था, तो इंद्रप्रस्थ प्राप्त करने की जो इच्छा है ना वो उसकी वो आसक्ति है उसकी, तो वो चाहिए उसको इंद्रप्रस्थ भी, और बाद में हम देखते हैं कि इंद्रप्रस्थ भी उसको मिल गया, दोनों मिल गए, वो इंद्रप्रस्थ का भी राजा है अभी हस्तिनापुर का भी राजा है, और पांडव लोग वनवास चले गए, अब जब वनवास खत्म हुआ पांडवों का जब पांडव लोग आए तो अभी सब ने बोला कि अभी दे दो इंद्रप्रस्थ है ना, 12 वर्ष तो हो गए अज्ञातवास भी हो गया, तो अभी वो छोड़ना चाहता है कि इंद्रप्रस्थ नहीं उसके प्रति उसका आसक्ति अभी बढ़ गया और कठोरता, और तो मतलब वो जो वस्तु हमारे पास है हमारे पास समझो कोई वस्तु फ्लैट है हमारा तो उस फ्लैट के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ता है ना, और एक फ्लैट लेना चाहते हैं है ना इससे भी अच्छा, और और जो है हमारे पास उसको भी छोड़ना नहीं चाहते, उसके प्रति भी हमारा आसक्ति बढ़ता है। तो ये रजोगुण है। अभी रामायण से जा हम देखेंगे कि रावण जो था ना, उनके पास 100 पत्नियां थी, 1000 पत्नियां थी, 1000, और राम के पास कितनी थी? एक ही थी। फिर भी वो संतुष्ट था कि 1000 होने के बाद भी फिर भी उनको सीता चाहिए, और किस लिए चाहिए? उसके से वो आके बोलता था सीता को, मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है। लेकिन वो प्रेम था क्या रावण का सीता के ऊपर? नहीं, वो तो शारीरिक आकर्षण था। जैसे कोई स्त्री पुरुष के प्रति एक शारीरिक आकर्षण होता है ना, तो वो थोड़ी प्रेम होता है। प्रेम बहुत अलग बात है ना। पाश्चात्य देशों में हम सुनते हैं कि एक एक व्यक्ति 15-15, 20-20 शादियां करता है ना। एक शादी हो गया तो बोलता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है। प्रेम है क्या वो? नहीं, वो शारीरिक। अगर प्रेम होता तो छोड़ता क्या? फिर दूसरी, ऐसा करते करते कितनी शादियां करते हैं वो लोग, कितने पता नहीं कितनी करते हैं ना। फिर वो कोई प्रेम नहीं है। वो तो जब शारीरिक आकर्षण चला जाएगा, सुंदरता, तो फिर एक दूसरे का तलाक ले जाएंगे, नहीं तो फिर दूरी बनी रहेगी अपने अंदर। वो है राग, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो भक्तों से होता है, भगवान कृष्ण से होता है ना। तो कोई फैमिली गृहस्थ फैमिली अगर भक्त है थोड़ा अलग बात है। गृहस्थ दोनों पति पत्नी अगर भक्त है ना तो बात थोड़ा अलग है। तो उसके अंदर फिर थोड़ा आध्यात्मिक भावना, भक्ति भावना जागृत होती है, तो थोड़ा बात अलग है। लेकिन ये कोई है क्या प्रेम? ये नहीं, वो तो सिर्फ शारीरिक आकर्षण है। तो इससे ऊपर जो सत्वगुण है ना, सत्वगुण में बोला गया है कि उसमें ज्ञान और प्रकाश होता है ना। उसमें क्या होता है? ज्ञान और सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ऐसा बोला है भागवतम में। एक श्लोक है ना, उसमें ऐसा बोला गया है। तो वो सत्वगुण क्या करता है? हमारे सभी इंद्रियों के जो द्वार है ना, उसके उसमें क्या करता है? प्रकाश और ज्ञान पैदा करता है सभी इंद्रियों के द्वार पे। इसको कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे कि हमारे आचार्य लोग दृष्टांत देते हैं। समझो तुम्हारा घर है और घर का द्वार है, दरवाजा, और वहाँ पे प्रकाश है, मतलब कोई फोकस लगाया, बल्ब लगाया बड़ा, तो घर के बाहर का भी दिखेगा हमको, घर के थोड़ा सा अंदर का भी दिखेगा, है ना। तो घर के अंदर अगर कोई चोर घुस रहा है अंदर, तो प्रकाश में दिखाई देगा ना कि ये चोर अंदर घुस रहा है करके। तो भले अंदर के 3-4 रूम जो भी है अंदर बेडरूम में, भले उधर अंदर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन द्वार पे क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए, तभी दिखेगा ना। तो हमारे जो शरीर है तो उसमें भी द्वार है। तो उस द्वार के अंदर से ये राक्षस लोग अंदर घुसते हैं। तो ये सत्वगुण क्या करता है? तो उसमें प्रकाश पैदा करता है। सत्वगुण क्या करता है? हमारे इंद्रियों के द्वार पे प्रकाश पैदा करता है। तो हमारे इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों के जो द्वार है ना, हर एक कान को भी होल है इधर, वहां से हमारा आवाज अंदर जाता है। तो कौन सा राक्षस अंदर जा रहा है पता चलता है? सत्वगुण क्या करता है? उसमें प्रकाश और ज्ञान पैदा करता है। तो समझो हमारा कान का उदाहरण लेंगे, तो कान से हमारे अंदर, कान का जो द्वार है, इस द्वार के अंदर क्या जा रहा है? आवाज जा रहा है ना। तो कोई भौतिक ध्वनि है जो गलत है, अगर उसको हम सुन रहे, समझो फिल्मी कोई गाना सुन रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो ये हम सत्वगुण में रहेंगे तभी पता चलेगा। अगर सत्वगुण में कोई व्यक्ति नहीं, तो वो तो सुबह सुबह उठने के बाद चालू करेगा फिल्मी गाने और सुनता रहेगा, क्योंकि उसको इसका ज्ञान ही नहीं है कि ये गलत चीज है करके ना? तो वो जो सत्वगुणी व्यक्ति वो क्या करेगा? अपने इंद्रियों का द्वार बंद कर देगा, है ना। तो जैसे कि भगवद गीता में कछुए का उदाहरण दिया जाता है। तो कछुआ जब संकट आता है तो 5 इंद्रिय जो रहता है ना, वो अपना खाल के नीचे खींच लेता है। कछुआ क्या करता है पता है ना? जब उसको आप एक ऐसा पत्थर मारो कछुए के ऊपर, अगर किधर रहेगा बॉडी में, तो कछुआ क्या करेगा? सभी इंद्रियों के 4 पैर और अपना सर वो ढाल के नीचे खींच लेगा। तो उसी तरह भक्तों को क्या करना चाहिए कि अगर कोई बुरी बात है तो हमारे इंद्रियों के द्वार को बंद कर देना चाहिए। तो तो हमारे कान से कोई गलत ध्वनि अगर अंदर जा रहा है शरीर के अंदर, तो सत्वगुण क्या करता है, द्वार में ऐसा प्रकाश पैदा करता है कि हमें हमें पता चले कि क्या जा रहा है अंदर। और दूसरा सत्वगुण का क्या यह है कि वो ज्ञान भी पैदा करता है, सिर्फ प्रकाश पैदा करता है ऐसा नहीं है। समझो हमारा जो हमने उदाहरण दिया जो घर का फ्लैट का, तो फ्लैट के द्वार पे अगर प्रकाश है तो हमको पता चलता है कि अंदर कौन जा रहा है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि चोर लुटेरा कोई है क्या, अच्छा आदमी है क्या बुरा है, तो फिर हम जाने देंगे अंदर उसको? अगर हमको ये पता है कि वो चोर लुटेरा है तो हम घर के अंदर जाने देंगे क्या उसको? नहीं। तो सत्वगुण क्या करता है, ज्ञान भी पैदा करता है कि ये जो आवाज़ कान के अंदर जा रही है वो सही है क्या नहीं। अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इसके संबंधी कोई आवाज़ अंदर जा रहा है तो हम पूरा द्वार खोल के उसका हमें क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तो ये सत्वगुण जो है ना, हमारी इच्छा नहीं भी तो अगर हम सत्वगुण में रहेंगे तो हमें ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी, तो हमारी इच्छा नहीं रहेगा भी तो हम स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, है ना। हमारा इच्छा नहीं रहेगा तो भी हम ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो इसे हम क्या सीखते हैं कि हमेशा हमें सत्वगुण में रहना चाहिए। अभी सत्वगुण में रहने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, ये बात तो सही है कि सत्वगुण में हमें हमेशा रहना चाहिए तो सत्वगुण से ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है, लेकिन सत्वगुण में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें साधना भक्ति करनी चाहिए। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंगल आरती जप प्रवचन सुनना, सेवा करना, तो कृष्ण भावना में हमें रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे अंदर का जो रजोगुण तमोगुण है वो कम होके हमारे अंदर सत्वगुण होता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं कभी कभी भी अपनी सात्विकता से ढलते नहीं, मतलब विचलित नहीं होते। तो जो कथा आती है ना भागवत में, एक बार भृगु ऋषि, पता है सबको भृगु ऋषि का जन्म ब्रह्मा के त्वचा से हुआ है और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो सरस्वती नदी के तट पे एक सभा बुलाई गई, बहुत बड़ी बड़ी सभा ऋषि मुनि के, हजारों ऋषि मुनि थे। अभी उधर चर्चा का विषय था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। अभी 33 कोटि देव के बारे में बोला जाए तो हिरण्यकशिपु को अपने घर में सबको नौकरी भी लगा दिया था, इंद्र चंद्र सब जितने भी देवता थे सबको अपने घर में लगाया था, और रावण ने भी ऐसा किया था। तो बचे कितने, 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 3 में से अभी कौन श्रेष्ठ है, किसका हमें भक्ति करना चाहिए। ये 33 कोटि के देवता तो चले गए क्योंकि ये रावण भी और हिरण्यकश्यप भी इसको हरा सकता है। तो बचे कितने, 3, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अभी इनमें से कौन श्रेष्ठ है, तो ये परीक्षा करना है। अभी परीक्षा कौन कर रहा है, इतना बड़ा देवता की कौन परीक्षा लेगा। फिर भी भृगु ऋषि को सबने चुना और उन्होंने भेज दिया पहले ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी के पास। और उधर ब्रह्मा, ये तो पुत्र है ब्रह्मा के और गुरु भी है, ब्रह्मा से ही सब अपना परंपरा चालू होता है ना। तो उधर जाने के बाद इन्होंने, हमें कभी भी गुरु के सामने जाने के बाद दंडवत प्रणाम करना चाहिए उनको, उनको उनके हमारे शब्दों से स्तुति करना चाहिए गुरु के पास जाने के बाद। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जाके खड़े हो गए ना, तो थोड़ा मुंडी भी झुकाया नहीं, ऐसा प्रणाम भी किया नहीं। तो ब्रह्मा क्रोधित हो गए, ये मेरा पुत्र आज बिगड़ गया कल को, आज ना तो स्तुति कर रहा है ना प्रणाम कर रहा है। तो उनके चेहरे पे राग दिखाई दिया, तो भृगु ऋषि समझ गए कि ये सत्वगुण के देवता नहीं है, वो तो फिर रजोगुण में नहीं तो जा रहे अभी, तो इनका सात्विकता स्थिर नहीं है। फिर उसके बाद कैलाश पर्वत गए शिव जी के पास, उधर जाके, अभी शिव जी के भाई है ना ये, शिव जी बड़े भाई है ना, कुमार के बाद शिव जी पैदा हुए, बाद में त्वचा से भृगु ऋषि पैदा हुए, तो वो भाई भाई है। तो शिव जी ने देखा कि छोटा भाई आ रहा है तो आगे आलिंगन करने के लिए हाथ आगे किया। तो उधर ये इन्होंने आलिंगन करना चाहिए जाके शिव जी को, तो इन्होंने आलिंगन बिलिंगन कुछ किया नहीं, हेड बोले राख लगाया सब शरीर के ऊपर, है ना, मेरे स्पर्श मत कर, ऐसा करके वाणी के द्वारा इनका अपराध किया। तो शिवजी फिर क्रोधित हो गए, त्रिशूल लेके निकल गए मारने को, तो पार्वती चरणों पे पड़ी, और फिर क्रोध आया ना उनको, मतलब ये सात्विकता में है क्या, नहीं। शिवजी भी सात्विकता अपना छोड़ के क्रोधी हो गए। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में वैकुंठ लोग जाते हैं भगवान के पास, तो हमारे वैकुंठपति लक्ष्मी जी के गोद में सोए हुए थे, तो जाके सीधा छाती पे लात मारते उधर जाके, अभी देखते हैं इनका क्या है। तो वो तो शरीर के द्वारा अपराध, पहले तो मन के द्वारा अपराध हुआ था, बाद में वाणी के द्वारा, अभी शरीर के द्वारा अपराध किया सीधा। हाँ, तो फिर देखा अभी इनके चेहरे पे क्या होता है। तो हमारे जो भगवान जो है वो तो थोड़ा भी क्रोधित नहीं हुए, अनेक शब्दों के द्वारा भृगु ऋषि की स्तुति की, उल्टा बोले कि मेरा आप इधर आए, मेरा वैकुंठ पवित्र हो गया है ना, पूरा आपके चरण इधर लग गए है ना, तो मेरा छाती बहुत कठोर है क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ एक दृष्टि से देखा जाए, और आप ब्राह्मण हैं, आपके पैर कैसे है मुलायम। तो इस तरह अनेक प्रकार के उन्होंने स्तुति की, और फिर भृगु ऋषि से आंखों से आंसू आए और फिर चले गए किधर, अपने ऋषि मुनि की सभा में, और सबको बोल दिया पूरा वृत्तांत क्या है। हाँ सब ये ठीक है, कौन श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता का उधर परीक्षा हो गया। तो ये तो उन ऋषि मुनियों ने श्रेष्ठता का परीक्षा किया, तो हम लोगों को भी ये सुन के हमें श्रेष्ठ कौन है। और भगवान कृष्ण के जो भक्त भी होते हैं ना, वो भी कभी अपना सात्विकता छोड़ते नहीं। जब भी कभी कभी हम देखते हैं कि क्रोध आता है हमको, तो किस वजह से क्रोध आया वो भी बात थोड़ा सोचना चाहिए कि बाबा अगर अपना पुत्र है कोई गलत काम कर रहा है, तो पिता नहीं तो माता उसको क्रोध करती है ना, तो वो क्रोध गलत नहीं है, वो तो उसमें प्रेम होता है क्रोध में, तो उसको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए है ना। नहीं तो गुरु है, आपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए कठोरता से थोड़ा शब्द वाणी बोल रहा है, तो वो भी क्रोध जो है ना, वो भी क्रोध क्या है, सही क्रोध है। नहीं तो गुरु कोई हमारे गुरु की और कृष्ण की निंदा कर रहा है, तो वो क्रोध भी सही है। अर्जुन ने भी क्रोध किया था। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, कभी भी अपना सात्विकता छोड़ते नहीं। बहुत बार हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल के अंदर कुछ गलत आता है आजकल, तो स्त्री पुरुष के बारे में कुछ ऐसा दिखाई जाता है। तो जो व्यक्ति सात्विकता में नहीं है, तो वो तो देखेगा उधर और फंस जाएगा, और जो व्यक्ति के अंदर सात्विकता है ना, वो कभी देखेगा नहीं वो मोबाइल में। वो समझ जाएगा कि ये सात्विकता छूट रहा है मेरा, अभी सात्विकता से मैं जा रहा हूँ रजोगुण में, तो कभी उसको देखना नहीं चाहिए। तो उधर हमारा क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए, नियंत्रण चाहिए, क्योंकि आजकल तो सबके हाथ में है। अगर उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं, तो फिर हमारा नरक का रास्ता खुला है। तो हमारे अंदर भौतिक इच्छा जागृत होगी। तो ये ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सात्विकता है। पहला हमारा चर्चा का विषय कि ब्राह्मण के अंदर सात्विकता रहती है, और हमें सात्विक होना चाहिए, और अगर सात्विक हम रहेंगे तो हमारा ऊर्ध्वगति हमको प्राप्त होता है, हमारा सभी तरह से कल्याण होता है, हमें सुख शांति समाधान प्राप्त होता है। तो कभी भी हमें हमारा सात्विकता छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि अंदर वो सात्विकता है। अभी जितने भी ब्राह्मण के गुण हैं आज का प्रवचन में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो ब्राह्मण का गुण आता है शमो, भगवद्गीता में शमो दमो तपो शौचम शांति अर्जमेव च ज्ञान विज्ञान अस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, तो नौ गुण बताए ब्राह्मण के। तो नौ गुण में पहला ही शमो है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शमो जो गुण है ना ब्राह्मण का, वो पहला ही है, मतलब वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है करके भगवान ने पहले शमो डाला है। और तो शमो का मतलब है मन का नियंत्रण, मन जो होता है ना उसका नियंत्रण। अगर हमारा मन जो है ना भगवान के चरणों में लगा, तो हमें शांति प्राप्त होती है। शमो का एक दूसरा शब्द शांति भी है। तो दुनिया में बहुत लोग शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं, हर जगह जाते हैं, इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए। शांति मिलता है नहीं, ऐसा शांति पैसा देके, अभी जो करोड़पति लोग हैं पैसा देके शांति प्राप्त कर सकते हैं नहीं, 10 करोड़ दो शांति दे दो है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अलग अलग जो स्थान होता है ना, तो अलग अलग स्थान का भी महत्व होता है। जैसे कोई अगर जो मटन बेचते हैं ना, चिकन बिचन ऐसा गली है, न तो मछली बेचते हैं ना, वो गली है, तो उस गली में एंट्रेंस करने के पहले भी हमारे नाक में ऐसा गंदा बास आएगा, लेकिन हम उस अंदर जाने को जी चाहेगा उधर नहीं। लेकिन कुछ लोग खाते भी है ना, मछली खाते हैं ना, मटन चिकन भी खाते हैं, लेकिन जो सात्विक व्यक्ति है ना उधर जाएगा तो उधर ऐसा नाक पकड़ेगा, उसको उधर अंदर जाने का भी इच्छा नहीं होगा, है ना। लेकिन कुछ लोग खाते हैं ना प्रेम से, खाते हैं कि नहीं। अभी कोई कोई स्थान का भी महत्व होता है कि भक्तों को एक तो वैष्णव का संग करना चाहिए और ऐसे स्थान में भी हमको रहना चाहिए कि जो स्थान पवित्र हो, है ना। जब ऐसे स्थान जैसे कोई गंदी गली है, उस गली में एंट्री करते वक्त ही हमको पता चलेगा कि ये कुछ ठीक नहीं है। अभी हमारा जो जीवी के अंदर जब कोई भी प्रवेश करता है तो उसको जो है ना उसको लगता है कि ये कोई अलग स्थान है, इधर हरिनाम का गूंज उठता है, इधर है ना प्रवचन कीर्तन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का सेवा होता है, तो एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण रहता है। ऐसा स्थान होता है जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है, उनका जप होता है, वो स्थान ही बहुत अलग रहता है। तो वो हमें ऐसे स्थान में रहना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे शमोगुण का, तो ये शमोगुण मतलब मन का नियंत्रण। अगर ये जो मन है ना, हमारा मित्र भी है हमारा शत्रु भी है, अगर इस मन को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर लगाते हैं तो मन हमारा क्या है, मित्र है। अगर ऐसा करने में असफल है तो फिर हमारा मन क्या है, शत्रु है। तो इसके बारे में एक कथा था ऐसा कि एक फकीर था और एक गांव का कुछ सीती बीते रहता है ना, फिर उसके बाद जंगल चालू होता था, तो जंगल और सीती के उधर बैठा एक पेड़ के नीचे साधु फकीर, और ध्यान पहले के सतयुग में जो है ना भगवान श्री कृष्ण का प्राप्ति के लिए लोग क्या करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। तो ये बैठा है फकीर अपने भगवान का ध्यान करते, तो एक सुंदर स्त्री है ना उधर भागते भागते आती है, और वो साइड में जंगल है, घोर जंगल और खेती है, और शाम का समय है और साधु ध्यान में बैठा है। इस स्त्री को चिंता है कि उसका पति किधर है, अभी तक अंधेरा होने को आया है, पति घर नहीं लौटा, और पति की चिंता, उसका ही ध्यान है पति का, अगर थोड़ा अंदर जाएगा तो शेर खा जाएगा, नहीं तो अभी अंधेरा हो रहा है अंधेरे में, तो उसको अपने पति का चिंता थी, पूरा पति के ऊपर ध्यान था, और ऐसा भाग रही थी पति को ढूंढने के लिए ताकि ढूंढे और जल्दी घर वापस ले आए। तो वो भाग रही थी, साधु इधर बैठा था साइड में, तो भागते वक्त इसको पता भी नहीं चला, उसने लात मारा शायद साधु को अपने पैर से और चली गई। तो साधु तो जग गए एकदम, लात मारा तो तो देखा वो स्त्री देख भी नहीं रहे, भागी उधर आगे, कुछ देर के बाद उधर जाती है और पति मिलता है उसको, और फिर पति को साथ में लेके खुशी से वापिस आती है। तो बाद में जब वापिस आते तो साधु देखते हैं वो, और दोनों पति पति साधु है करके फिर दंडवत प्रणाम करती है इसको, साधु को, और जब दंडवत प्रणाम करती तो साधु कुछ स्तुति बीते करते प्रणाम करते हैं, तो वो टाइम पे साधु बोलते कि अभी तो तुम प्रणाम कर रहे हो अच्छा, जाते वक्त लात मार के गई है ना, मेरा पूरा ध्यान ये चला गया उधर, तो अभी मैं तुमको शाप ही देने वाला था, लेकिन आके तुमने दंडवत प्रणाम किया और साधु की थोड़ा स्तुति किया। तो वो स्त्री बोली, मैं तो पति के ध्यान में थी, पति का ही चिंतन कर रही थी कि जंगल का शेर कोई खाना जाए पति को, मुझे कुछ भी याद नहीं था वो टाइम पे, मैंने आपको पैर लगा लात मारी तो मुझे, मैंने देखा भी नहीं उसकी तरफ, मतलब मुझे ये भी नहीं हुआ उसके, और मैं चली गई, और अगर मेरे से अपराध हुआ है तो फिर उन्हें और एक बार दंडवत किया, किसको, साधु को। फिर साधु का थोड़ा गुस्सा ठीक हुआ और फिर वो पति पत्नी चले गए गांव, अपना घर चले गए। लेकिन ये साधु सोच रहा है कि मैं तो मेरे पति का ध्यान कर रहा था, और साधु के पति कौन है, लक्ष्मीपति, और मेरा ध्यान एक पैर का थोड़ा ये लग गया तो टूट गया है ना, लेकिन ये जो स्त्री थी तो इसको, इसने मेरे को लात मारा उसको पता ही नहीं चला, तो उस स्त्री का अपने पति के प्रति जो ध्यान था वो मेरे से श्रेष्ठ था, और मेरा जो ध्यान था भगवान कृष्ण के प्रति वो टूट गया। फिर और दृढ़ता के साथ वो क्या करने लगा, ध्यान करने लगा। तो हम भागवतम का भी जब कथा सुनते हैं ना, तो जब ये हमारे जो परीक्षित महाराज थे वो जब आते हैं ना, तो देखते कि कोई प्यास लगती है ना उनको, तो देखते कि शमिक ऋषि का आश्रम है उधर, तो ऋषि ध्यान में बैठा है। तो और एकदम ऐसा, अभी ये तो सम्राट थे तो हर कोई स्वागत करता था उनका आने के बाद, तो ये ऋषि मुनि तो देख भी नहीं रहे, इनको प्यास लगी, पानी चाहिए। तो जब उनको लगा कि ये ऋषि मुझे देख के ढोंग कर रहे हैं, और जो ढोंगी व्यक्ति उसको दंड देना तो राजा का कर्तव्य है ना, तो ऐसा सोच के फिर उन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सांप उठा के उसके गले में डाल दिया शमिक ऋषि के। तो जब ऋषि के गले में डाला, उनको लगा कि ये ढोंग कर रहा है, लेकिन ढोंगी ऋषि थे क्या वो शमिक ऋषि? नहीं, सत्यीव का बात था ना, तो ध्यान करते थे लोग, सत्यीव का बात नहीं था वो, लेकिन फिर भी वो ध्यान करते थे। तो उनका ध्यान टूटा क्या? नहीं, इसका मतलब उसका पूरा मन किधर था? भगवान के चरणों में था। और छोटा सा सर्प उनके गले में डाल दिया था, उसका ध्यान टूटा क्या? नहीं टूटा। इसे हम क्या सीखते हैं कि हमेशा हमारा जो ध्यान मन है किधर रहना चाहिए? भगवान के चरणों में। तो हम अभी प्रवचन सुन रहे सब लोग, तो हो सकता है कि हमारा ध्यान किधर और हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा बोला गया है कि सुप्तावस्था में जो रहते हैं ना जीवात्मा का, तो वो टाइम भी जो मन है हमारा सारी इंद्रियों के कार्य कर सकता है। मन हमारा बहुत खतरनाक है। जब हम सुप्तावस्था में भी होते हैं तो हमारा मन जो है ना हमारे सारी इंद्रियों के कार्य कर सकता है, वो चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है मन। कभी हम जब सोए हुए हैं सुप्त अवस्था में है तभी भी मन हमारा कार्य कर सकता है। तो अभी हम इधर प्रवचन सुन रहे हैं, हो सकता है कि हमारा मन इधर नहीं है, लेकिन प्रवचनकर्ता जो भी कुछ बोल रहा है तो फिर हमको अगर पूछा जाए अगर हमारा मन इधर नहीं तो हम बोल सकते क्या बोला उन्होंने? नहीं बोल सकते, क्योंकि मन ही हमारा उस इंद्रिय के साथ नहीं है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी इंद्रिय से जब हम भोग करते हैं तो उस इंद्रिय के साथ अगर हमारा मन नहीं है तो उसका मतलब हमें यह नहीं, उसका विषय भोग हमें पता नहीं चलता। तो अगर कोई व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमेशा अगर भगवान का ध्यान कर रहा है, सोच रहा है इस बारे में, तो वो अच्छा है। और कोई इधर भगवान का सेवा भी कर रहा है अगर मन दूसरी तरफ है, वो क्या है? गलत है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमारा मन जब हम सेवा करते हैं, जब प्रवचन सुनते हैं, कुछ भी भगवान श्री कृष्ण का कार्य करते हैं, तो हमारा जो पति है लक्ष्मीपति, तो उसके प्रति हमारा मन पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें सेवा करना चाहिए। ये ब्राह्मण का गुण है, सबसे पहला गुण है कि हमारा जो मन है ना हमेशा किसके चरणों में होना चाहिए? भगवान की सेवा में होना चाहिए। तो और भी एक कथा था, एक साधु थे, तो और एक उसके सामने थोड़ा दूरी पे एक वेश्या रहती थी। तो साधु के घर में हमेशा प्रवचन कीर्तन भजन चलता था और उसी की आवाज़ आती थी कुटिया से, और जो वेश्या की कुटिया थी उधर घर था, तो उधर से तो क्या संगीत बिंगीत क्या रहता है, लावनी बिवनी ऐसा ही आवाज़ आता है ना उधर से। तो ये साधु जो है ना तो अपना जो कार्य तो कर रहा था जपा विपा, लेकिन हमेशा ध्यान किधर रहता था? वो वेश्या के घर से क्या आवाज आ रही है। और वेश्या तो मतलब उसको इच्छा नहीं थी ऐसा पापी कर्म करने की, लेकिन परिस्थितिवश वो कर रही थी। लेकिन मन में हमेशा क्या सोच रही थी कि कब मुझे भगवान का सेवा करने का मौका मिलेगा, साधु कितना अच्छा है। हमेशा किसके बारे में सोचती थी? साधु के बारे में। साधु के कुटीर से क्या आवाज आ रही है, जय राधा माधव का सुन रहा है, नहीं तो कोई वैष्णव सॉन्ग सुन रहा है, नहीं तो हरे कृष्ण धुन वो सुनती थी। वो कर्म गलत कर रही थी बहुत, लेकिन मन किसके ऊपर था? भगवान के ऊपर था। तो बाद में जब दो गुणों का देहांत होता है ना मृत्यु, तो साधु किधर जाता है? नरक में जाता है, और वेश्या किधर जाती है? स्वर्ग में जाती है। तो सिर्फ किसी का ये कैसे हो गया? क्योंकि मन वो साधु का नहीं था उधर, और वेश्या भले अभी पापी कर्म कर रही है, लेकिन हमेशा ये इच्छा करती थी कि मुझे अच्छा कर्म करने को मिले, भगवान सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का संधि मिले, ऐसा वो सोचती थी हमेशा के लिए। तो इसलिए हमारा मन हमेशा भगवान के चरणों में होना चाहिए। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमें ब्राह्मण बनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। वृषभदेव भी बता रहे अपने पुत्रों की आप ब्राह्मण के गुण अर्जित करो, है ना। तो ब्राह्मण भी तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार होता है ये जो पहला प्रकार है ना वो द्विज ब्राह्मण है, तीन प्रकार के। तो द्विज ब्राह्मण क्या होता है, गुरु महाराज हमारे दीक्षा देते हैं ना, और ये फिर गायत्री मंत्र करता है रोज और तपस्या करता है, जप करता है ना। तो इसमें द्विज ब्राह्मण में मेन तपस्या का गुण होता है, वो तपस्या करता है। और उसके बाद का जो ब्राह्मण है वो उसको बोलते हैं विप्र। तो विप्र ब्राह्मण में एक और योग्यता आती है, और वो क्या करता है कि तपस्या भी करता है और उसके साथ साथ शास्त्र का अध्ययन करता है और दूसरों को भी बताता है शास्त्र। तो ये हो गया विप्र, मतलब शास्त्र में बहुत निपुण है वो, क्योंकि शास्त्र पढ़ रहा है और दूसरों को भी बता रहा है शास्त्र। अभी उसके ऊपर भी और एक ब्राह्मण है, उसको बोला जाता है वैष्णव ब्राह्मण, वो सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण है। तो उसमें तपस्या का भी गुण होता है और शास्त्र अध्ययन भी करता है, दूसरों को भी बताता है और साथ साथ विनम्रता का भी गुण होता है। क्या होता है? विनम्रता। ये दोनों ऊपर के ब्राह्मण है वो नम्र नहीं है। जैसे कि दुर्वासा मुनि थे ना, अम्बरीश महाराज की कथा आती है ना, तो दुर्वासा मुनि ये दो नंबर के प्रकार के ब्राह्मण थे, विप्र थे। और जब ये अम्बरीश महाराज के पास गए तो अम्बरीश महाराज तो वैष्णव थे, तो पारायण समय था ना, तो आपको सबको कथा पता है अम्बरीश महाराज का और ये दुर्वासा मुनि का। तो दुर्वासा मुनि को कितना खतरा झेलना पड़ा, वो सब देवलोक में चले गए, ब्रह्मा के पास चले गए, सबसे आखिर में भगवान के पास चले गए। तो भगवान ने भी उनको ये नहीं किया, किधर जाओ बोले, अम्बरीश महाराज के चरणों में जाओ। तो खतरे में पड़ गए ना, क्योंकि नम्रता नहीं थी। तो ये जो विप्र ब्राह्मण होता है ना, भले शास्त्र का अध्ययन करना दो, बहुत शास्त्र का अध्ययन कर दिया तो अहंकार भी आ जाता है उसके शास्त्र के अध्ययन के साथ, लगता है कि ऐसा श्लोक कोई नहीं बोल सकता, मैं श्लोक मूल में बहुत पटु हूँ, है ना, दूसरों को गीता के बारे में बता रहा हूँ, भागवतम के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर उनके नम्रता नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये विनम्रता जो गुण है ना, ये ब्राह्मणों के अंदर होता है। तो ये तीन प्रकार के ब्राह्मणों में, तो तीसरे प्रकार का जो ब्राह्मण है वैष्णव ब्राह्मण, तो उसके अंदर नम्रता होती है, शास्त्र पढ़ता है वो, तितिक्षय होता है, तो सब उसके अंदर गुण होते हैं। और जो शास्त्र पढ़ता है तो दूसरों को भी बताता है, प्रचार भी करता है। तो ये वैष्णव ब्राह्मण क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। तो मन का जो नियंत्रण है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और उसके पहले हमने इसके बारे में सात्विकता जो होती है ब्राह्मणों के अंदर, उसके बारे में चर्चा किया। और फिर उसके बाद आता है दम, शमो दमो। तो दमो का मतलब है हमारे जो इंद्रिय है, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और ग्यारहवा मन। तो ये किधर लगना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अभी वृषभ देव जो है ना, आपने जो शिक्षा है उसका समापन कर रहे हैं अभी, और समापन का एक जो श्लोक है इसके पीछे तो उसमें ये बताते हैं वृषभ देव कि पुत्रों को बताते हैं कि तुम्हारे जो इंद्रिय है तो सब किस में लगाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। तो जैसे हमारे कान है, तो कान से अगर हम कोई फिल्मी गाने सुन रहे, कोई ऐसा भक्ति छोड़ छोड़ के दूसरा सुन रहे, तो कान भगवान के चरणों में लगा क्या, नहीं, कान सेवा कर रहा है क्या भगवान की, नहीं कर रहा। तो अगर हम कान के द्वारा अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं तो कान का सार्थक हो गया, वो भगवान के चरणों में। उसी तरह सभी इंद्रिय, हमारा मन के बारे में भी हमने बहुत चर्चा किया, तो मन भी अगर भगवान के चरणों में अगर नहीं लगता तो भी भगवान का सेवा नहीं हो रहा है। तो कोई कोई एक ऐसा शास्त्र में आता है कि कोई अगर स्त्री है अपने के पति के साथ रहती है और पति की सब तरह से सेवा कर रही है, कुकिंग कर रही है, उसका कपड़ा धो रही है, सब सेवा कर रही है, लेकिन वो कुकिंग करते वक्त कि कोई परपुरुष का अगर स्मरण कर रही है मन के अंदर, तो उसको अच्छे पतिव्रता स्त्री कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह हम भी भक्त है तो हमें भगवान का सेवा पूरा मन लगा के हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में असफल है तो उस स्त्री के समान है ना। तो मन भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति का जो डेफिनेशन दिया है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो इसका मतलब है हमारे सभी इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाने में अगर सफल हो गए है ना, तो इसी को भक्ति बोलते हैं। और ऋषिदेव जो है ना अपने सौ पुत्र को यही शिक्षा दे रहे हैं। बहुत से पिता ऐसा सोचते हैं कि मेरा पुत्र अगर अमेरिका गया और उधर जाके पैसा कमाएगा तो सबको बोलेगा कि मेरा पुत्र किधर गया, अमेरिका गया, छाती ठोक ऐसा बोलेगा अमेरिका गया करके। और फिर बाद में पुत्र उधर जाके तीन चार लड़कियां लेके आता है इधर, और बुढ़ापे में जो पुत्र को कोसते कोसते मर जाएगा गाली देते हुए पुत्र को, है ना। तो लेकिन अभी कोई शेर है ना, भागवत में ऐसा बोला गया कि अगर कोई शेर है वो भी अपने बच्चों को ना कैसे शिकार करने का वो सिखाता है, अपना पेट का पालन पोषण कैसे करना है, तो एक वो भी सिखाता, शेर भी सिखाता है ना। तो पशु भी अपने बच्चों को कैसे अपने पेट भरना चाहिए वो सिखाता है। अगर हम भी मनुष्य होके अपने बच्चों को कैसे अच्छा नौकरी करना चाहिए, कैसे पैसे कमाने चाहिए, यही अगर सिखाते हैं तो पशु से अलग नहीं है, ये पशु के समान ही है। तो वृषभ देव जो उपदेश अपने बच्चों को अपने पुत्रों को दे रहे ना, ऐसा उपदेश देना चाहिए हम पिता होके, है ना। तो उनको बोलना चाहिए कि हमारे सभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन सभी बेटों क्या करो, भगवान की सेवा में लगा दो। अगर हमारे पास बुद्धि है बहुत अच्छा प्रवचन भी कर सकते हैं हम, तो हम हमारे बुद्धि का उपयोग किस लिए करना चाहिए, प्रचार के लिए। अगर कोई मृदंग अच्छा बजाता है तो प्रभुपाद बोलते तो भगवान के लिए बजाओ, फिल्मी गाने के लिए नहीं, है ना। तो वो जो कला है उसका उपयोग किस लिए कर रहा है, वो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। अगर कोई कामगार है वो कोई पेंटिंग अच्छा कर सकता है, कोई टाइल का काम अच्छा कर सकता है, कोई प्लम्बर है, कोई ये है, तो वो अगर अपनी जो कला है उसका उपयोग अगर भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए, वैष्णव की संतुष्टि के लिए अगर करता है तो उसका जीवन सफल है। और साथ साथ भक्ति भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुबह है 8 बजे शाम को 1 बजे तक 12-11 बजे तक 2 शिफ्ट में सब पेंटिंग का ही काम कर रहे और भक्तों का संग नहीं ले रहे। भक्तों का संग लेना मतलब उसके साथ साथ जाना, है ना, खाना पीना करना उसके साथ, भक्तों के कंधे पे हाथ रखना, ये मतलब नहीं है भक्तों का संग लेना। मतलब भक्तों का संग लेना मतलब शुद्ध भक्त के मुख से शास्त्र का ज्ञान सुनना चाहिए, तो उसको बोलते हैं भक्तों का संग लेना। नहीं तो कंधे पे हाथ डाल के भक्तों के संग साथ गए तो संग नहीं होता, वो नहीं होता। वो शास्त्र के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए, उसको संग बोलते हैं भक्तों का। तो यही वृषभदेव का शिक्षा है। अभी बहुत से ब्राह्मण के और भी आगे गुण है 9, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।